दिन भर 21 अप्रैल शुक्रवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। फ्रांस में चरमपंथी हमले के बाद तेज हुई राजनीति। बीएसएफ से बर्खास्त हुए तेज बहादुर यादव ने कहा,
मेरे को डिसमिस करने का मेन मकसद यही है कि जवानों को मैसेज देना कि हमारे ऑफिसर्स के खिलाफ आवाज उठाओगे, जैसे तेज बहादुर को हमने डिसमिस किया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान पर उठाई उंगली, सम्मान पाने वालों में बच्चन परिवार भी शामिल। साप्ताहिक कार्यक्रम विवेचना में आज रेहान फजल याद करेंगे रामनाथ गोयनका को।
कोने में खड़े हुए अपनी लंगोट बांध रहे थे दीवार की तरफ मुंह किए हुए, पीछे कुलदीप नैयर और मैं, और अब आप अनाउंस करें, कुलदीप आई थिंक वी विल गिव हिम प्राइम मिनिस्टर एंड बाबू जगजीवन राम।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। फ्रांस के प्रधानमंत्री बर्नार्ड कुजनव ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति चुनाव के सभी उम्मीदवार गुरुवार को पेरिस में हुए चरमपंथी हमले का इस्तेमाल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कर रहे हैं। फ्रांस में रविवार को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। सोशलिस्ट पार्टी के नेता बर्नार्ड कुजनव ने धूर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट की उम्मीदवार मरीन ली पेन की आलोचना की। मरीन ली पेन ने सीमा पर नियंत्रण बहाल करने और जिन विदेशियों पर सुरक्षा एजेंसियों की नजरें हैं उन्हें फ्रांस से बाहर करने की अपील की थी। कंजर्वेटिव उम्मीदवार फ्रांस्वा फिलों ने भी ऐसे ही अपील की थी। वहीं एक और उम्मीदवार इमैनुअल मैक्रोन ने चरमपंथियों से सख्ती से निपटने का वादा किया और कहा कि पेरिस पर हमले से फ्रांस को डरना नहीं चाहिए। पेरिस हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई थी। रविवार को होने वाले चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने चुनावी रैलियां और अन्य कार्यक्रम रोक दिए हैं। वहीं फ्रांस के मीडिया के मुताबिक गुरुवार को पेरिस में चरमपंथी हमले के लिए जिम्मेदार शख्स का नाम करीम चुर्फी बताया गया है। 39 साल के करीब करीम चुर्फी फ्रांस के ही नागरिक बताए जा रहे हैं, जो दो पुलिसकर्मियों समेत तीन लोगों के कत्ल की कोशिश में 2001 में जेल की सजा काट चुके थे। फ्रांस के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि चुर्फी पुलिस की नज़रों में था और इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। फ्रांस के समाचार एजेंसी AFP ने बताया है कि उसके शव के पास चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के समर्थन में लिखा एक नोट मिला है और IS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जर्मनी की पुलिस ने बोरुसिया डॉर्टमुंड फुटबॉल टीम की बस पर पिछले हफ्ते हमले के सिलसिले में जर्मनी और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध उसी होटल में रह रहा था जहां फुटबॉल खिलाड़ियों को ठहराया गया था। यह हमला मोनाको के साथ हुए मैच से पहले हुआ था। बताया गया है कि इस शख्स ने होटल के इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए टीम के शेयर प्राइस पर सट्टा लगाया था। संदिग्ध होटल के जिस कमरे में ठहरा हुआ था वहां से वो जगह साफ दिखाई दे रही थी जहां पर टीम की बस को निशाना बनाकर धमाके किए गए थे। जांच अधिकारी इस हमले के पीछे लालच को वजह बता रहे हैं। वहीं जर्मनी के आंतरिक मंत्री थॉमस डिमेजियर ने इस गिरफ्तारी को जांच में एक बड़ी सफलता बताया है। सबूत काफी मजबूत है, शक भी बहुत पुख्ता है। हालांकि इन सबूतों को जोड़कर देखना होगा कि क्या मामला चलाया जा सकता है। अगर ये साबित होता है कि कोई अपनी लालच के लिए शेयर बाजार को लोगों की हत्या करके प्रभावित करना चाहता था तो ये काफी घृणास्पद होगा। ये थे थॉमस डिमेजियर के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमरीकी रक्षा मंत्री जेम्स मेटिस ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि सीरिया के पास फिर से रासायनिक हथियार आ गए हैं। इसराइल की यात्रा पर गए जेम्स मेटिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा,
There can be no doubt in the international community's mind.
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मन में कोई संदेह नहीं है कि सीरिया ने फिर से रासायनिक हथियार अपने पास रखे हैं। ये समझौते के खिलाफ है और उस बयान के खिलाफ भी है जिसमें सीरिया ने कहा था कि उन्होंने ये सारे रासायनिक हथियार नष्ट कर दिए हैं। अब कोई शक नहीं बचा है कि ये कितने हैं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सीरिया के पास कुछ हथियार तो हैं। ये सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। ये थे जेम्स मेटिस के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि मजार ए शरीफ शहर में सैनिक अड्डे पर हमला किया गया है। एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी गाड़ी सैन्य कैंप के दरवाजे पर उड़ा दी जिसके बाद हथियारबंद लड़ाकों ने हमला बोल दिया। अभी मजार ए शरीफ के सैनिक अड्डे पर सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच गोलीबारी जारी है और इस हमले में 8 अफगान सैनिकों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
BBC रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों से करते हैं। फ्रांस में बीती रात एक चरमपंथी हमला हुआ जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई जबकि दो लोग जख्मी भी हुए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। एक और संदिग्ध ने बेल्जियम में समर्पण कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिस शख्स ने हमला किया वो पहले से ही पुलिस की आतंक निगरानी सूची में था। इस बीच फ्रांस के प्रधानमंत्री बर्नार्ड कैजेनेव्यो ने राष्ट्रपति चुनाव में प्रमुख दक्षिणपंथी पार्टी की उम्मीदवार मैरिन ली पेन की उस मांग को खारिज कर दिया है जिसमें फ्रांस की सीमा पर तुरंत नियंत्रण बहाल करने की बात की गई थी। प्रधानमंत्री ने गुरुवार के हमले को लेकर मैरिन ली पेन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। नेशनल पार्टी की उम्मीदवार जैसा कि हर हादसे के बाद करती हैं इस घटना से भी फायदा उठाने की फिराक में हैं और लोगों को बांट रही हैं। वो डर और भावनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रही हैं। अब तक की जांच में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे कि बीती रात की घटना और प्रवासियों के बीच संबंध जोड़ा जा सके। प्रधानमंत्री सत्ताधारी सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं और फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हैं। ऐसे में जाहिर है कि छोटी बड़ी घटनाओं का राजनीतिक फायदा पार्टियां उठाने की कोशिश में हैं। मध्यमार्गी पार्टी के उम्मीदवार इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है कि वो उस तरह के राष्ट्रपति साबित होंगे जैसा कि आतंकवाद से जूझने के लिए इस वक्त देश को जरूरत है। आतंकवादियों की इच्छा देश को स्थिर करने की है। वो ऐसे समय में तकलीफ दे रहे हैं जब फ्रांस के लोग अपने भविष्य का फैसला करने वाले हैं। वास्तव में वो लोकतंत्र पर हमला करना चाहते हैं, हमारे सामंजस्य को वो तोड़ना चाहते हैं, हमारे मूल्यों पर चोट करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में सेना के प्रमुख और हमारी संस्थाओं के रक्षक के रूप में राष्ट्रपति की प्राथमिक भूमिका लोगों की रक्षा करना है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। मध्यमार्गी उम्मीदवार इमैनुएल मैक्रोन के शब्द। पेरिस में इधर और फ्रांस के दूसरे हिस्सों में भी इधर कई चरमपंथी हमले हुए हैं और वहां अगले महीने चुनाव होने हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और आइए अब रुक करते हैं भारत का। आपको तेज बहादुर यादव का नाम जरूर याद होगा। मैं बीएसएफ के उसी जवान की बात कर रहा हूं जिन्होंने कुछ महीने पहले अर्धसैनिक बलों को मिलने वाले सरकारी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था। बड़ा विवाद हुआ और अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। उनका घर हरियाणा के रेवाड़ी में है। कल ही वो घर पहुंचे। हमारे सहयोगी सलमान रवि आज उनसे मिलने पहुंचे। सुनते हैं कि दोनों में क्या बात हुई।
तो क्या हुआ, अचानक बर्खास्त क्यों कर दिया?
इन्होंने कोर्ट बैठाया हुआ था लेकिन कोर्ट भी हॉर्स के कोर्ट जो SSFC साइलेंट कोर्ट होता है उसमें उनके विटनेस होते हैं लेकिन एक जवान के विटनेस के लिए बड़ा इसमें मुश्किल होता है। जो भी कोर्ट्स होते होते हैं इसी तरीके से उन्होंने अनडिसिप्लिन केसेस लगा के, हालांकि खाना जो था वही मैं साबित कर चुका हूँ कोर्ट में भी कि जो खाना दिखाया गया खाना वही है, लेकिन फिर भी अनडिसिप्लिन केसेस लगा के डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया है।
तो जब ये आपने आवाज़ उठाई थी तो क्या बहुत लंबे समय से इस तरह का खाना दिया जा रहा था कि बर्दाश्त के बाहर हो गया था तब आपने ये आवाज़ उठाई?
सर इसके लिए मैंने सभी को पहले कंप्लेंट किया, जो प्रोसीजर है फौज का वो फॉलो किया और मैंने इसके लिए रिटर्न में 23 नवंबर को जब मैं छुट्टी में था उस समय मैंने रजिस्ट्री से हमारे डायरेक्टर जनरल श्री जो हैं के शर्मा साहब को लिखा, गृह मंत्रालय को भी लिखा, PMO को भी लिखा और ह्यूमन राइट्स को भी लिखा। मैंने उसका वेट भी किया और मेरा मकसद नहीं था कि मैं सोशल मीडिया पर डालूं या इस तरह वायरल करूं, लेकिन मजबूरी हालात में ये काम करना पड़ा है।
क्या ये इसी तरह की ज़िंदगी हर कैंप की होती है या सिर्फ आप जिस कैंप में थे वहाँ के ये हालात
है? नहीं सर, ये हालात ज़्यादातर जो है उस एरिए में ज़्यादा है, उस एरिए के कारण है जो ये जिस हम कैंप में थे। इस कैंप में तो ये तो एडम बेस है, अभी इससे आगे फ़ोन अलाउ नहीं है। इससे आगे आप जाओगे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है और जो सीनियर अधिकारी हैं वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, वो हेलीकॉप्टर से ही विजिट करते हैं सिर्फ।
अच्छा।
और जवानों से ज़्यादा लिंक नहीं है उनका, तो इस वजह से बीच के कुछ अधिकारी, कुछ बड़े अधिकारी, और मैंने पहले भी कहा था गवर्नमेंट से